عید قربان کی آمد آمد ہے، عید قربان کی آمد کے ساتھ ہی کچھ تصورات، کچھ خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ عید قربان یا بقرعید کا لفظ ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے مختلف جانور، بکرے، گائے اور دیگر جانوروں کے خیالات ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفکرات شروع ہو جاتے ہیں، ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، ان کی پرچیزنگ، آج کل جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور قیمتیں ہیں اس میں ایک فکر یہ بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان قربانی کے جانوروں کے ذبح کے جو مراحل ہیں، ڈسٹریبیوشن آف میٹ ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا بہت اہم تصور جس کا بالکل بہت ہی گہرا تعلق ہے بقرعید سے، جو ہمارے ذہن میں آتا ہے فوراً، وہ آتا ہے کہ گوشت کے مختلف بنے ہوئے انواع اقسام کے لذیذ کھانے۔ یہ دو تصورات بہت گہرے ہمارے ذہن میں، ہر شخص بقرعید کے لفظ سے ان تصورات کو ریلیٹ کرتا ہے۔ کیا کوئی اور تصور بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ آتا ہے، لیکن بحیثیت قوم مجموعی طور پہ کتنا آتا ہے؟ جو قربانی کا فلسفہ ہے، جو بقرعید کی یہ عبادت ہے، جو قربانی کی عبادت ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، اس کا فلسفہ اور اس کا وجود ہمارے اسلامی معاشرے میں اپنے کتنے اثرات دکھا رہا ہے؟ کیا ہم قربانی کی جو عبادت ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی ریاکاری کی طرف تو ہم نہیں جا رہے؟ معنوی اثرات کیا ہمارے معاشرے میں مرتب ہو رہے ہیں؟ اس موضوع پہ، معنوی اثرات پہ اور اس کے معاشرے پہ جو اثرات ہیں، میری طرف سے گفتگو جسارت ہوگی۔ مجھے جو ڈسکس یا آپ سے باتیں کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ گوشت جو بقرعید میں زیادہ مقدار میں ہمارے گھروں میں اسٹور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ہفتوں تک اور بعض صورتوں میں مہینوں تک جو مختلف قسم کی غذائیں اور ڈشز بنتی ہیں، ہمیں اس پہ گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ اگرچہ ہمیں سوچنا چاہیے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ جو روح عبادت ہے وہ صرف بقرعید سے نہیں، ہر عبادت کی روح اصل مقصد وہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس پہ زیادہ بہتر عالم اور علماء حضرات گفتگو کر سکتے ہیں۔ مجھے جو گفتگو پہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بقرعید کے گوشت، اور ایک عمومی طور پہ گوشت کی جو ہمارے صحت پہ اثرات ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرنا ہے۔ دیکھیں، خدا نے ہمیں بے شمار اور ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، گوشت غذائی پروڈکٹس میں ایک بہت اہم پروڈکٹ ہے، ہمارے جسم کی نشو نما، ہمارے جسم کی قوت، قوت مدافعت، اس کے لیے گوشت ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے اور ریکمینڈ کیا گیا ہے گوشت کے لیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک ریکمینڈیشن، ایک سفارش اور بھی ہے جو شاید کسی دوسری غذا کے بارے میں نہیں ہے، اپنے پیٹ کو، اپنے معدے کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ۔ آخر کچھ تو وجہ ہوگی نا کہ اپنی افادیت کے باوجود گوشت میں کچھ تو ایسا ہوگا جس کے انسانی صحت پہ اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو کچھ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ بقرعید میں یہ معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کو ہم یہاں سے لے کے چلتے ہیں کہ پہلا ہمارا جو مرحلہ ہوتا ہے بقرعید میں، عید قربا میں، وہ ہے جانور کا سلیکشن۔ اگرچہ آج کل سلیکشن بہت ہی محدود ہو، ہمارے اپنے اختیار سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک بہترین جانور خرید کے لائے، صحت مند بھی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ گھر کا پلا ہوا ہو، جنگلی نہ ہو۔ گھر کے پلے ہوئے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو غذا دی جاتی ہے اسے کنٹرولڈ ہوتی ہیں، اور اس سے بننے والے اس کے جسم کے جو گوشت اور اس کے اثرات ہوں گے وہ بھی مفید ہوتے ہیں۔ بہرحال، لیکن اب وہ ہمارے بہت حد تک ہمیں اختیار میں نہیں رہا، جو جن کے جیب میں پیسے ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو اور دے، لیکن وہ تو ان مسائل سے شاید نکل جاتے ہیں، لیکن ہماری عوام کی اکثریت वो अपनी जेब देखती है और मंडी में जो रेट्स होते हैं वो देखती है, और बहरहाल जो भी एक कम्प्रोमाइज होता है उसके बाद वो लेके आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी एक अहम मरला है कि एक सेहतमंद जानवर, बूढ़ा जानवर ना हो, जवान हो, सेहतमंद हो, घर का पला हुआ हो, ग्रास की उसकी फीडिंग हो, ये हमारे इख्तियार से काफी हद तक हमारे इख्तियार में नहीं है। दूसरा मरहला, दूसरा मरहला होता है कि उसका ज़िबह करना। अब आम दिनों में अगर आप अकीका करें तो आप किसी बेहतरीन प्रोफेशनल कसाई को लेके आते हैं और प्रॉपर वे में गोश्त की कटिंग होती है, बकरी में ऐसा नहीं होता। बकरी में मतलब प्रोफेशनल जो कसाई है उसका मिलना बड़ा दुश्वार, और अगर खुशकिस्मती से मिल भी गया आपको तो फिर क्योंकि टाइम बहुत कम है उनके पास, तो वो जितने टाइम में उनको आपके जानवर की हड्डी और बोटी बनानी है उसमें प्रॉपर वे में नहीं बनती। किस चीज को रिमूव करना है, किस चीज को रखना है, कितना टाइम देना चाहिए, ये नहीं होता कंट्रोल। और फिर आजकल तो बकरीद के जो मौसमी कसाई होते हैं हर महल्ले में इस तरह के पाए जाते हैं, उनको तो कतई कोई आइडिया नहीं होता। उनको तो कतई कोई आइडिया नहीं है कि गोश्त को बनाने का तरीका असल है क्या। जी हाँ, गोश्त बनाने का भी तरीका है। कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें होती हैं जिसको रिमूव करना जरूरी होता है। हम देखते हैं, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बकरीद में गोश्त के अंदर एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है जो कि आम गोश्त में नहीं होती, जिसको बिसान कहा जाता है। आम गोश्त में नहीं होती वो। देखिए, बकरा अगर काट रहे हैं हम क्या करते हैं, यानी जो नॉर्मल तरीका है वो खाल उतारने के लिए उसको हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। गाय को ऐसा नहीं करते, उतना हैवी जानवर है उसको लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं होती घरों में कि वो गाय को लटका सके। जबकि जब यही स्लॉटर हाउस में कटता है तो बाकायदा उसकी कटिंग के बाद उसको हैंग किया जाता है, बल्कि इवन अब तो जो कटिंग का मरल है वो भी मशीनाइज हो चुका है, आपके पाकिस्तान में भी हो चुका है, वो अलग बात है कि अभी सही तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब होता यह कि जब वो हैंग होता है तो उसके जितने फ्लूइड्स हैं, जो ब्लड है, एक तो ब्लड वो है जो हमने ज़िबह करते वक्त निकाल दिया, 100% नहीं निकला, वो निकल गया। शरीयत का भी हुक्म है कि जब वो ज़िबह के वक्त जो खून निकल जाए उसके बाद जो खून के असरात होते हैं वो पाक हैं, लेकिन 100% तो नहीं निकला ना। अभी सिर्फ ब्लड ही नहीं होता, कुछ और नामियाती फ्लूइड्स होते हैं, अगर हैंग कर देंगे तो वो फ्लूइड्स आहिस्ता आहिस्ता ड्रिपिंग की फॉर्म में निकल जाएंगे। लेकिन कुर्बानी गोश्त में ऐसा नहीं होता, ना तो वो बिसांत जो आती है आपको इस वजह से आती है, और वो जो बिसांत है या जो एक खास किस्म की जो स्मेल है वो कोई उसके मुस्बत असरात नहीं है, मनफी असरात हैं सेहत के ऊपर। बहरहाल ये भी अगर हम देखें तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी मशीन या हमारे पास घर में ऐसा कोई इंसान नहीं था कि हम गाय को लटकाएं, बकरे को भी लटका दें ना, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, 10 से 15 मिनट खाल उतरती है, वो बहुत मुख्तसर टाइम है। इसके बाद क्या मरहला, डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत जल्दी जल्दी मुख्तसरन में चल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो टोटल इंसान के अख्तियार में है, वो जिस तरह भी करे, लेकिन इसमें एक सिर्फ पॉइंट बस बताना है, वो ये कि देखें, डिस्ट्रीब्यूट अगर न्यूज़पेपर के पीसेस में किया जाएगा, और जैसे गोश्त के लिए नहीं है, तमाम फूड के लिए है ये। हमारी आदत है, हम मजलिसों में शीरमाली बढ़ रही है तो ठीक है वो थैली में भी है, लेकिन बाद वक्त वो अखबार के अंदर लपेट के दे देते हैं या और कोई चीज़ इस तरह की। ये अखबारी इंक जो होती है, यानी जिससे कि प्रिंट होता है, प्रिंटेड इंक, इसमें बहुत ही मोहलिक सीसा मौजूद होता है, लेड होता है, और वो फौरी तौर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके बहुत प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट होंगे, बहुत ही लंबे इफेक्ट होते हैं और सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। तो कोशिश करें कि इसको प्लास्टिक के बैग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और इसके बाद का असल मरहला जिसपे हमें जरा तफसील से गुफ्तगू करनी है, वो है उस गोश्त का स्टोरेज और उससे रिलेटेड बनने वाली गिज़ाएं। कुर्बानी का गोश्त जब तक डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए सारे नॉर्मली स्टोर नहीं करते हम। अब डिस्ट्रीब्यूशन में अब वो गोश्त बना है, उसके बाद उसके हिस्से बनेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर जो भी रिमेनिंग गोश्त होगा वो आप स्टोर करेंगे। इसमें कई घंटे भी लग जाते हैं बस सुरदों में, और अगर बड़ा जानवर है तो मजीद टाइम भी लग सकता है। गोश्त एक ऐसी गिजा है या रॉ मटेरियल है जो जरासीम के लिए बहुत ही पसंदीदा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा उसमें तेजी के साथ जरासीम पलते हैं। अगर गोश्त को या तो वो हैंगिंग पोजिशन में होता है तो एयरेशन हो रही होती है, ये एयरेशन खुद जरासीम से बचाती है अगर वो साफ हवा है। ये जब यही वजह है कि जब हम गोश्त की दुकान पे देखते हैं जो गोश्त लटका हुआ होता है वो सुबह से लटका रहता है, शाम तक लटका रहेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। हवा जो मौजूद है हमारे सराउंडिंग में, अब वो अलग बात है कि अगर रोड पे दुकानें बनी हुई हैं और वो एयर ही पॉल्यूटेड है तो उसके असरात अपने अलग होंगे, वो पॉल्यूशन के असरात है। लेकिन गोश्त कम से कम सड़ने से नहीं, सड़ने से महफूज रहेगा। लेकिन नॉर्मली हम घर में तो नहीं लटका के रखते ना, वो तो बस एक जमा है किसी कंटेनर में या वैसे तख्त पे पड़ा हुआ है, फर्श पे पड़ा हुआ है, चादर में रखा हुआ है, वो कोई सही मेथड नहीं है। क्योंकि चाहे आपको उसमें स्मेल ना आए, एक होता है ना कि भाई गोश्त सड़ने का भी हमें नहीं यार, वो तो गोश्त हमने रखा था, शाम तक रखा रहा, उसमें तो कोई स्मेल नहीं आई, सही था। देखिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जरासीम होते हैं ये दो किस्म के, एक को हम कहते हैं बहुत ही मोहलिक, पैथोजीन कहते हैं उसको अपने टर्म में, मोहलिक हैं जिससे मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। अगर हमारे जिस्म में चले जाए तो फिर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होंगी। दूसरे वो हैं जो कि उस गिजा को, उस फूड को खराब कर देते हैं, और खराब होने का इंडिकेशन हमें कैसे पता चलता है, उसमें खराब स्मेल आना शुरू हो जाती है, एक मखसूस किस्म की बदबू आना शुरू हो जाती है। ये जो फूड को खराब करते हैं ये जरूरी नहीं है कि बीमार भी डाले इंसान को, अगरचे हम वो ऐसी गिजा नहीं खाते जिसमें स्मेल है, क्योंकि हमारे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको नहीं कबूल करेंगे। क्योंकि इंसान जब खाता है तो सबसे पहले तो उसके मुंह को में जायका अच्छा लगे, उसकी उसकी खुशबू अच्छी हो, तमाम चीजें देखता है वो। लेकिन ये जरासीम जो फूड को खराब करते हैं ये इतने मोहलिक नहीं होते, ये इतने खतरनाक नहीं है। बीमार डालने में हो सकता है कोई उनका रोल हो भी तो बहुत ही लिमिटेड, मिसाल के तौर पर कोई स्टमक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, ये एक टेम्परेरी या एक बहुत ही लो रिस्क की आप बीमारी या डिसीज कह सकते हैं। लेकिन वो जरासीम जो कि खुद बजाते खुद बहुत मोहलिक हैं, वो ऐसे जहर, कुछ ऐसे पॉइजन, कुछ ऐसे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी है, यानी कि इवन उसमें जो आप जिसको आप लीते कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज, जी हाँ इस तरह की बीमारियां, और वो अगर आपके गिजा में मौजूद है उनकी कोई स्मेल नहीं होती, वो फूड को खराब नहीं करते लेकिन वो मौजूद है। लिहाजा अगर कई घंटे आपने गोश्त रखा बगैर किसी इस बहुत ही मखसूस किस्म की स्टोरेज के और उसमें स्मेल नहीं आ रही, आपने कहा ठीक है ये सेफ है, हाँ आपके शायद खाने में आपको कोई एहसास ना हो लेकिन उसमें वो जरासीम पैदा हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसका कोई इंडिकेशन नहीं है आगे पास कि वो कोई स्मेल आना शुरू हो जाए, लिहाजा हम समझते हैं कि सही है, और हम उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन के मरल होता है अब उसको हम फ्रीजर में रखते हैं। देखिए फ्रीजर में रखने से ये सब जानते ही बहुत कॉमन सी बात है, जरासीम जो पहले से मौजूद है वो खत्म नहीं होंगे, पकाने से गर्म करने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है, लेकिन फ्रीज करने से खात्मा नहीं होता। हाँ अगर शुरू में ही नहीं है, फ्रेश गोश है बिल्कुल, आपने प्रॉपर फौरन ही रख दिया फ्रीज किया तो ठीक है, ये तो बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर उसमें जरासीम पैदा हो गए उसके बाद आप फ्रीज कर रहे हैं तो वो जरासीम बस ये होगा कि उनकी जो अफजाइश तेजी से होती है वो रुक जाएगी, तो इतना फर्क पड़ेगा कि उनकी मल्टीप्लीकेशन, उनकी अफजाइश बहुत तेजी से इनकी अफजाइश होती है जरासीम की, सिर्फ 20 मिनट में 20 मिनट्स में ये अपनी क्वांटिटी को डबल कर लेते हैं। अगर जैसे मैं इस वक्त काउंट करना शुरू करूं और स्टार्टिंग में लेट्स सपोज 1,00,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरासीम मौजूद है, सिर्फ 20 मिनट के अंदर 2,00,000 हो चुके होंगे और उससे अगले 20 मिनट में 40,00,000 हो चुके होंगे, और इस तरह से चले जाए कितनी तेजी से इनकी रफ्तार बढ़ती है। अब फ्रीजर में आपने अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जरासीम वाला गोश्त रख दिया तो चाहे आप उसको कितने भी माइनस टेम्परेचर पे, कितना अच्छा भी फ्रीजर है, वो नहीं खत्म होंगे। जब आप उसको निकालेंगे फ्रीजर से अपने बाहर, और उसको जाहिर है कि पहले आपने थॉ करना होता है, यानी इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना होता है, फिर उसकी कुकिंग करेंगे, ठीक है, तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, उनकी एक्टिवनेस खत्म हो गई जैसे फ्रीजर में। लिहाजा रिकमेंड ये किया जाता है कि गोश्त जो आपने फ्रेश कटिंग की है उसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप फ्रीज करें, और फ्रीज भी करें तो स्मॉल पैकेट्स में करें जो आपके एक डिश के लिए रिक्वायर्ड है। ये ना हो कि आपने बड़े पैकेट बना लिए और उसके बाद जब आपने कोई डिश उसे बनाना थी आपने उसको निकाला, उसको थॉ किया यानी उसको मेल्ट किया, अब उसका एक पोर्शन आपने बना लिया और दूसरा पोर्शन आपने कहा नहीं यार ये ज्यादा हो गया, आप इसको दोबारा जाके आपने फ्रीज कर दिया। ये तरीका गलत है क्योंकि जब आप थॉ करेंगे तो वो मजीद मल्टीप्लीकेशन और वो मजीद अफजाइश जरासीम की हो चुकी होगी उसमें, और जितनी बार आप ये काम करेंगे कि फ्रिज में रख रहे हैं, फ्रीजर में रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, थॉ कर रहे हैं, अगेन उससे दोबारा फ्रीज कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा ये जरासीम की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और उतने ही ज्यादा वो गोश्त जो है उसके नुकसानदेह असरात बढ़ते चले जाएंगे। स्मॉल पैकेट हो जो एक डिश के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, छोटी फैमिली वाले छोटे पैकेट, इट्स अप टू यू जितने भी उसके पैकेट्स आप बनाए। फ्रीजर का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एक इशू ये बन जाता है कि हमारे यहाँ लाइट का मसला बहुत है, दो दो घंटे तीन तीन घंटे लाइट नहीं होती, अब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है उस वक्त, यानी फ्रीजर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा बढ़ेगा। जो सेफ टेम्परेचर है गोश्त के लिए वो होना चाहिए कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे लेस, उससे कम, ठीक है। अगर लाइट चली गई और आपके फ्रीजर में बर्फ जो थी वो मेल्ट हो गई और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ गया तो वो समझने फ्रीजर भी अब महफूज नहीं रहा उस गोश्त के लिए, ठीक। अगर -10 यानी जो हमारे स्कर्द वगैरह में सर्दी पड़ती है इतना टेम्परेचर अगर आपके फ्रीजर का है तो उस सूरत में बहुत से बहुत, वैसे ये जुमला मैं कह रहा हूं लेकिन ये सिफारिश नहीं की जाती इसके लिए, 3 महीने तक आप गोश्त रख सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि यार ये गोश्त कितने अरसे तक महफूज रह सकता है, लेकिन ये कुछ कंडीशन है इसके साथ। आपका फ्रीजर बार बार ना खुला है जो कि मुमकिन नहीं है, लाइट ना जाए जो कि अब हमारे यहां कम से कम सिटी मुमकिन नहीं रहा, ठीक है, और टेम्परेचर अगर फ्रीजर का मेंटेन रहे, बार बार वो थॉ ना हो यानी निकले बाहर और फिर अंदर जाए ये ना हो, ठीक है, तो फिर। और दूसरी बात एग्जाम में रखें कि वो गोश्त भी फ्रेश फ्रीज किया गया और बिल्कुल यानी जरासीमों से पाक गोश्त हो तो उसके लिए। तो बहरहाल ये कुछ स्टोरेज से मुताल्लिक बात है। फिर अब आ जाइए असली बात कुकिंग की तरफ। कुकिंग हमारे यहाँ डिफरेंट वेज में की जाती है, बॉइलिंग करके भी हम बनाते हैं यानी पानी में, कोई भी सालन बनाओ ना पानी बनता है ना, वो बॉइलिंग मेथड है। फ्राई भी किया जाता है, बारबेक्यू भी किया जाता है, ये मुख्तलिफ कुकिंग के मेथड्स हैं। बेहतरीन तरीका गोश्त के पकाने का सेहत के हवाले से अगर बात करें वो है बॉइलिंग मेथड, और वो भी रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे। यानी एक आम कुकिंग जो होती है, जो आम कंटेनर एक आम पतीली में होती है, वो नॉर्मली जब वाटर बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन, वो टेम्परेचर आपकी पतीली में भी वही रहता है कमोबेश। ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पर पकाया जाए ताकि जल्दी गल जाए, और इसका ये काम आप कर सकते हैं प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर पे जो खाना पकता है इसलिए जल्दी बनता है कि उसका जो दर्जा हरारत या टेम्परेचर होता है वो 100 नहीं होता, प्रेशर कुकर टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और वो डिपेंड करता है खैर प्रेशर कुकर की के ऊपर जो वेट रखते हैं हम वो कितना बड़ा है या किस साइज का है। टेम्परेचर जितना बड़ा होगा वो वेट उतना ही ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा बॉइलिंग का, और गोश्त या हर चीज जल्दी गल जाती है। ये बेहतरीन तरीका है, लेकिन जाहिर है सारे खाने हमारे इस तरह के नहीं होते। बकरीद का मौका है, बारबेक्यू कैसे नहीं बने ये मुमकिन नहीं है। बाकायदा ये तो अब एक इवेंट बन गया है कि जनाब अब तो पूरे पूरे अंगीठियां और वो ग्रिल्स और तमाम रॉड सब मिलती हैं, फिर वो बाकायदा एक तकरीब होती है घरों की छतों के ऊपर या और कहीं, और ये तो एक इवेंट बन गया हमारा बारबेक्यू का। बहरहाल लेकिन इसके कुछ मनफी असरात हैं या इवन फ्राई भी होता है तो उसके भी कुछ मनफी असरात हैं सेहत पे। देखिए ये फ्राई का तरीका जो है, अगरचे ये उस डिश को, उस गिजा को मजीद लजीज तो बना देता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कीमियाई रिएक्शंस होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, दुनिया में तकरीबन 13 से 14% अमवात कैंसर से होती है। जितने लोग हर साल मरते हैं उसमें 13 से 14, यानी हर 100 में से 13 से 14 अफराद कैंसर के सबब बनेंगे, और उन 13 अफराद में से तकरीबन 30% 30% फूड के जरिए होने वाले कैंसर से मरते हैं। और इसका एक बहुत अहम, सिर्फ उसमें गोश्त ही नहीं कंट्रीब्यूट करता, उसमें कुछ और गजाएं भी हैं। गोश्त का रोल क्या है कैंसर पैदा करने में? देखिए, जब इसको फ्राई या बारबेक्यू किया जाता है या इसको ज्यादा मिकदार में खाया जाए, अगर इवन मैंने कहा ना बॉइलिंग मेथड, हाँ एक बेहतरीन मेथड है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब बॉइल गो, यानी आम सालन जो है, कौरमा नहारी और जो इस तरह की चीजें बनती हैं बॉइलिंग से बनती हैं, ये आप ज्यादा मकदार में खाएं तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जैसे मैंने शुरू में मासूम की तरफ से मनकुल कौल है कि अपने मैदे को, अपने पेट को जानवरों का कब्रस्तान ना बनाओ, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि फ्राइड चीजें ना खाओ, नहीं, ज्यादा मकदार में कभी भी गोश्त खाएं आप, खासतौर पर रेड मीट, सुर्ख गोश्त जिसमें ये बड़े का जानवर जिसको हम लोग कहते हैं, बड़ा गोश्त जिसको हम कहते हैं, ये गाय बकरा दोनों इसी में आते हैं, बकरी में दुम्बे और ऊंट भी कटते हैं बाज जगहों पे, ये भी इसी में आते हैं। व्हाइट मीट यानी फिश, चिकन और अगर बटेर वगैरह जारे हम लोग को कहाँ मैसर, लेकिन अगर उसमें आते हैं तो व्हाइट मीट में आता है। व्हाइट मीट के फवायद ज्यादा हैं बनिस्बत रेड मीट के। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि इसका ताल्लुक क्या है कैंसर से, ये चीज इसलिए बताई जा रही है कि ताकि कुछ अवेयरनेस हमारे जहन में आए और हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकें। जब हाई टेम्परेचर पे बारबेक्यू किया जाए या फ्राई किया जाए, ये दोनों जो मेथड है इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है गोश्त का, तो कुछ ऐसे कीमियाई मादे बनते हैं जिसको अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में कहें तो, बहरहाल वो नाम शायद इतने फैमिलियर ना हो आप लोग के लिए, लेकिन सिर्फ कहने के हद तक ताकि जो सुने वो इसके मजीद अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक है हीट्रोसाइक्लिक अमाइंस। अब ये बहरहाल केमिस्ट्री के टर्म्स हैं। ये ऐसे जामियाती मादे हैं जो कि बारबेक्यू या फ्राइंग करते वक्त पैदा होते हैं, और ये दोनों ही नामियाती मादे कैंसर का सबब है। हत्ता कि अगर आप बारबेक्यू, जैसे मैंने अभी कहा था कि बारबेक्यू या फ्राइड मीट नहीं भी यूज करें, ज्यादा मकदार में गोश्त करें, तो भी ये पैदा होंगे जिस्म में। ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या हीट्रोसाइक्लिक अमाइंस बहुत अहम वजह है कैंसर का बनने का सबब। एक और वजह भी है जिससे गोश्त में, गोश्त के जरिए कैंसर खुदा ना खास्ता हो सकता है। देखिए, गोश्त एक बहुत अहम सोर्स है आयरन का, हमारे जिस्म में आयरन की बहुत अहम जरूरत है, लेकिन इत्तेदाल होना चाहिए ना। एक आयरन वो है जो कि फ्रूट से मिलता है या और कुछ जो नबाताती यानी जो प्लांट सोर्स है उनसे हमें मिलता है, वो ज्यादा फायदेमंद है, उसके ज्यादा मुद्दत असरात हैं। गोश्त से जो आयरन मिलता है इसको हम कहते हैं हीम आयरन। हम देखते हैं ना, हम हीमोग्लोबिन कहते हैं कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन इसीलिए कहते हैं कि एक प्रोटीन है बेसिकली, है जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है रेड कलर का होता है, हमारा जो कलर है उसका जो रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है वो है हीमोग्लोबिन, ये एक प्रोटीन है बेसिकली। इसमें मौजूद होता है एक आयरन, उसको हम कहते हैं हीम आयरन। ये हीम आयरन जो है, अगर तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी में जो है, स्मॉल क्वांटिटी में तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर ये ज्यादा मकदार में हो जाए, ज्यादा गोश्त अगर हम खाएंगे तो ये ज्यादा मकदार में जाएगा हमारे जिस्म में, تو پھر اس کے نقصانات ہیں, طبی نقصانات ہیں, اور یہ بھی ایک کینسر کا سبب بنتا ہے. کینسر کی بات میں نے کی آپ سے, ایک یورپ میں اسٹڈی کی گئی, ابھی کچھ حال میں ہی اسٹڈی کی گئی, تحقیق کی گئی. یہ تحقیق نارملی کی جاتی ہے, اس میں کرتے ہیں کہ کچھ افراد سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو, مثال کے طور پہ گوشت کی اگر ہم بات کریں, ایک گروپ کو بنا لیتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ آپ زیادہ مقدار میں گوشت کھائیں, یا ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ مقدار میں کھائیں, ایک وہ لوگ ہیں جو کم مقدار میں کھاتے ہیں. لیکن یہ جو تعداد ہوتی ہے یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی, یہ 100, 50, 200, 1000, 4000 ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی ایک اسٹڈی کی گئی جس میں تقریباً یورپ کے مختلف ممالک میں 600,000 افراد کو سلیکٹ کیا گیا, 600,000, ایک بہت بڑا گروپ بنا. یہ اس میں سے آدھے لوگ وہ تھے جو کہ زیادہ مقدار میں گوشت کھاتے تھے, ایک وہ لوگ تھے, یعنی ایک گروپ وہ تھا جو کہ کم مقدار میں گوشت کھاتا تھا. اور اس کے بعد یہ ان کے اوپر اس گوشت کے اثرات کو جب, اور یہ کافی 10 سال لمبی تحقیق تھی, ہے 10 سال لمبی, کینسر کا فورن افیکٹ نہیں ہوتا, 10 سال 20 سال اس سے بھی زیادہ ٹائم لے سکتا ہے اپنے اپیرنس لینے میں, خاموش قاتل کہا جاتا ہے نا اس کو. تو بہرحال اس کے بعد جو ریزلٹ ان کو ملا وہ یہی ملا کہ تقریباً جنہوں نے زیادہ گوشت کھایا تھا ان میں کینسر ہونے کے چانسز 30% تک انکریز ہو گئے تھے. یعنی یہ واحد اسٹڈی نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں, ان سب کے نتیجے یہی ہیں کہ یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے. اب بقرعید کے موقع پہ ظاہر ہے گوشت بہت ہوتا ہے, کچھ ہم نے اسٹور کیا ہوا ہوتا ہے, کچھ آ جاتا ہے ہمارے پاس, دوپہر شام رات کہیں جاتے ہیں دعوت میں تو گوشت کی تمام ڈشز. اب اس وقت کنٹرول ہمارا مشکل ہو جاتا ہے. سفارش کی جاتی ہے, ریکمینڈ یہ کہہ جاتا ہے کہ تقریباً 300 سے 500 گرام تک ایک ہفتے کے اندر گوشت یوز کرنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. میں نے کہا ایک ہفتے کے اندر. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, ہم کہ دعوت میں جاتے ہیں یا ویسے ہی بقرعید میں دیکھتے ہیں, ہم شاید ایک وقت میں اتنا کھا جاتے ہیں. 300 گرام کا مطلب تقریباً ایک پاؤں سے کچھ تھوڑا زیادہ. ہم باربیکیو کے لیتے ہیں تو ایک چکن کا جو ایک ونگ ہوتا ہے جو باربیکیو کہہ رہتا ہے اسی کا ویٹ تقریباً 200 گرام ہوتا ہے. اگر ہم دو ونگ کھا لیے تو ہم نے پورا اپنا ہفتے کا کوٹا پورا کر لیا. لیکن ہم میں کتنے لوگ پورا کرتے ہیں اس کو, اس طرح نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو یہی وہ ریکمینڈیشن ہے کہ ایک ہفتے میں 300 سے لے کر 500 گرام تک گوشت آپ کی صحت کے لیے مفید ہے, فائدہ مند ہے, صحت کو اور بہتر طریقے سے اس کی افزائش کر سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ پھر اس کے الٹے افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, یعنی کہ پھر یہ منفی اثرات ہوں گے, بیماریوں کی طرف بات جا سکتی ہے. میں نے ابھی کینسر کی بات کی, کارڈیو ویسکولر ڈیسیز یعنی کہ دل کی بیماریاں. دیکھیں یہ سب جانتے ہیں کہ دل کی بیماریوں میں ایک بہت مؤثر عامل کولیسٹرول ہے. کولیسٹرول لیول ہمارے بلڈ میں انکریز ہو جائے گا تو یہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. یہ جو ریڈ میٹ ہوتا ہے یعنی گائے اور بکرے کا گوشت یا ایون اونٹ اور دمبے کا گوشت, اس میں کولیسٹرول کا اماؤنٹ ہائی ہوتا ہے. اگر ہم کولیسٹرول کا اپنا پروفائل نکلواتے ہیں تو اس میں کچھ پروفائل کے اندر چیزیں آتی ہیں, LDL کولیسٹرول اور HDL کولیسٹرول, یعنی کچھ برا فیٹ اور اچھا فیٹ. فیٹ بھی اتنا کیوں ہوتے ہیں نا, تمام فیٹ برے نہیں ہوتے ہیں, وہ فیٹ برے ہیں جو کہ جمنے والے ہیں. جیسے گھی کے بارے میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے گھی نہ یوز کریں, آئل بہتر ہے. اور ان آئل کے اندر بھی سلیکشن ہوتا ہے کہ کون سا آئل بہتر ہے, کون سا آئل جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے. بہرحال لیکن گھی جو جمنے والا ہے وہ کیا کرے گا, وہ سیچوریٹ ہے. پھر وہ جو ہمارے بلڈ میں کولیسٹرول لیول ہے, جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ لو ڈینسٹی لیپو پروٹینز کولیسٹرول, وہ انکریز کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں ان میں یہ ڈپوزیشن ہوتی ہے, وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کیونکہ اس ایک پائپ ہے جس کا ڈائمیٹر زیادہ ہے, جس کا قطر زیادہ ہے, اس میں سے پانی آسانی سے گزر جائے گا. لیکن اگر وہ راستہ ہی آپ تنگ کر دیں, کم ڈائمیٹر کا پائپ لیں گے, تو اس کو اگر گزارنا ہوگا تو آپ کو پریشر زیادہ ریکوائر کرنا پڑے گا. تو ہمارا جو ہارٹ ہے یہ بھی ایک پمپنگ اسٹیشن ہے بیسکلی, یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور لنگس تک لے جاتا ہے, تمام پورے جسم تک سرکولیٹ کرنے کے لیے ریسپانسبل ہے. اب جب وہ وین سے بلاک ہو جائیں گے, یہ بلاک نہ بھی ہوں وہ تنگ ہو جائیں, تو ہارٹ کو زیادہ پریشر سے کام کرنا پڑتا ہے. یہی پریشر جو ہے ہمارے ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے. لہٰذا ہائی بلڈ پریشر سے بھی دل کی بیماری کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. لہٰذا بلڈ پریشر انکریز ہونے کا یعنی بڑھنے کا سبب بھی ایک سبب یہ ریڈ میٹ गाय और बकरे का गोश्त हो सकता है। हाँ, अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो गोश्त के मामले में बकरा फिर भी बेहतर है, बल्कि बास औरतों में तो रिकमेंड किया जाता है कि इसके गोश्त को जैसे बीमारों को देते हैं तो गाय का गोश्त नहीं देते, बकरे का गोश्त देते हैं। लेकिन खास तौर पर बकरे ईद में जो गाय का गोश्त, और आजकल चूंकि इज्तिमाई कुर्बानी का रवाज ज्यादा हो गया महंगाई की वजह से, तो इसमें जाहिर है कि इज्तिमाई कुर्बानी में ज्यादातर गाय कटती हैं, तो ये गाय का गोश्त के बारे में ज्यादा सेंसिटिव मामला है, इस बारे में ज्यादा एहतियात करना है। डायबिटीज का मसला, शुगर जो हो जाती है, अगर शुगर के बारे में हम ये जानते हैं कि शुगर का सबब या तो ज्यादा मकदार में शुगर खाई जाए या मीठी चीजें, और मीठी चीजों में भी ज्यादातर ये चीनी जो हम यूज करते हैं, ये वो चीज जो शुगर जो कि खुद नेचुरली फ्रूट्स में होती है मिसाल के तौर पर, वो इतना नुकसानदेह नहीं होती। खुदा ने ये चीजें जो बनाई हैं, ये इसमें तमाम चीजें जब एक कंबाइंड फॉर्म में, एक पैकेज की सूरत में बॉडी में जाती हैं, तो उसका इतना नुकसान ऐसा नहीं बल्कि अच्छे असर आते हैं। सिर्फ रिकमेंडेशन ये होती है कि मोतदिल रहें आप, ये नहीं कि कोई चीज अच्छी है तो कितनी अच्छी है, पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है, उसके बगैर हमारी जिंदगी का तस्वुर नहीं है। लेकिन क्या अगर हम बहुत ज्यादा रात में पानी के गिलास अपने जिस्म में ट्रांसफर कर दें, पी लेंगे नहीं पानी, तो क्या फिर भी उसके अच्छे असरात रहेंगे? अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक ऐसे, वो तो उनके पास या तो टाइम बहुत है या क्या मसले हैं, तो उनके पास जो है फजूल किस्म के मुकाबले करते रहते हैं। वहां एक मुकाबला हुआ कि पानी ज्यादा पीने का, कि पानी एक वक्त में कौन ज्यादा पिएगा, ठीक है, कौन ज्यादा पी सकता है। ठीक है जी, एक खातून वो मुकाबला जीत गई और वो जो इनाम वगैरह था वो मिल गया उनको, उस वक्त वो जीत गई, लेकिन उनकी बॉडी के फ्लड्स इतने इम्बैलेंस हो गए कि अल्टीमेटली चंद दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो पानी तो जिंदगी के जामिन है, लेकिन अगर ये भी इत्तेदाल से हट जाए तो ये भी फिर मौत की तरफ ले जाता है। इस तरह हर चीज अपने अगर इत्तेदाल में रखी जाए, इत्तेदाल में यूज की जाए, तो उसके बेहतरीन असरात हैं। सिर्फ फर्क हमें ये करना होता है कि किस चीज का इत्तेदाल का पॉइंट क्या है, यानी गोश्त के लिए इत्तेदाल का पॉइंट क्या है मिसाल के तौर पर, बाकी गुजाओं के लिए कितना है। तो मैं बात करना था कि डायबिटीज, डायबिटीज का बराह रास्त ताल्लुक शुगर से है अगरचे, और दूसरा एक और भी है जो हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर आटा, इसके हमने भूसी अलग कर दी ताकि हमें जो है वो बिल्कुल रिफाइंड साफ सुथरा फाइन आटा मैदा वो यूज करके जब चीजें बनाते हैं उसमें भूसी नहीं होती, अपनी इफादियत उसकी कम हो जाती है। ये जो भूसी होती है, ये जो ब्रान होता है, ये खुद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। बहरहाल वो हमें चूंकि अपनी लज्जत काम और दहन भी देखना होती है कि हमें देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी जो है उसका जायका ज्यादा फील हो और उसकी खुशबू भी अच्छी हो, मतलब ये पैरामीटर हमारे नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो तो हमें बाद में पता चलता है कि उसके क्या तबीयत असरात थे। तो बात ये कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो है ये जायबती, ये जो हमारा डायबिटीज है इसका सबब बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो गाय का गोश्त है, खसूसी तौर पर गाय का गोश्त रेड मीट, ये भी डायबिटीज को बढ़ाने का सबब बन सकता है अगर ज्यादा मकदार में खाया जाए। इसके बारे में मुख्तलिफ तहकीकात हुई है। ये भी प्रो ऑक्सीडेंट है और जो कि डायबिटीज में ये बढ़ाने में सबब बनता है। ओबेसिटी का भी सबब बन सकता है, यानी कि हद से ज्यादा मोटापा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी जो खराब किस्म के फैट हैं वो हमारे इसमें होते हैं, इसीलिए ये सब जानते हैं कि रिकमेंड क्या किया जाता है कि लीन कट यूज करें, यानी जो गोश्त यूज करें उसमें चिकनाई ना हो निकलवा दीजिए, जिसको हम कहते हैं कि बगैर चिकनाई के गोश्त या कुछ और बिटर में यूज होती है उसके लिए, ठीक है, रूखा गोश्त या कुछ इस तरह कहते हैं। बहरहाल तो वो इसीलिए कहा जाता है कि उसका जो फैट है, जो एनिमल का फैट है, खासतौर पर गाय का फैट है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगा, डायबिटीज का पेशेंट भी होगा और फिर ओबेसिटी भी हो जाएगी, यानी हद से ज्यादा मोटापा। हद तक ये रिपोर्ट्स तक हुई है, तहकीकात हुई है, जाहिर है कि जब ये कैंसर, डायबिटीज और ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, फालिज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर से बड़ा लिंक है उसका भी। देखिए अभी हम बात आपसे कह रहे थे कि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने की भी सलाहियत है, लिहाजा ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्रीज करेगा। इसमें एक और चीज भी होती है मीट में, सोडियम, जो नॉर्मली हमारे सोडियम हम तो टेबल सॉल्ट से लेते हैं, नमक से लेते हैं, आप सब जानते हैं कि नमक जब ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो रोका जाता है कि नमक अपने खाने में कम कर दें, नमक तो कम कर दें, लेकिन नमक के थ्रू ही से सोडियम हमारे समय नहीं पहुंचता, और भी जराए हैं। उसमें गोश्त भी है, खासतौर पर रेड मीट, गाय का गोश्त, ये भी सोडियम का एक बहुत अहम सोर्स है और इसके जरिए भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वो जो फालिज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज है इसका सबब बनते हैं। लगभग तमाम बीमारियां ज्यादा मकदार में या किसी इस मखसूस तरीके से पकाए हुए गोश्त को खाने से होती हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा क्या निकल रहा है, वो है शॉर्टन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ कम हो गई। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि सिर्फ कैंसर का सबब बनने वाले अमवात जो है वो पूरी दुनिया में एक साल में 74 लाख के करीब रिपोर्ट होती हैं और उसमें से तकरीबन 13% करीब जो है वो फूड के थ्रू कैंसर होता है। ये सिर्फ एक कैंसर की बात कर रहा हूं, फिर हार्ट कैंसर से कहीं ज्यादा फिगर जो है वो हार्ट अटैक की है, हार्ट की बीमारी कैंसर से कहीं ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। डायबिटीज बहुत कॉमन हो चुका है अब, और फिर इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है डायबिटीज से, फिर मजीद नई बीमारियों के रूट्स पैदा हो जाते हैं। तो ये कुछ बीमारियां डिसीज हैं जो कि रेड मीट खुसूसी तौर पे और बाकी जो मूवी कोई भी गोश्त अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके ज्यादा मकदार यूज करने में। हाँ, बता, वाइट मीट है, चिकन है, फिश है और इस तरह के जो मुख्तलिफ दूसरे परिंदे हैं उनके गोश्त के लिए उनके फायदे होते हैं, उनके और फायदे। अगर चे आज के दौर में इंसान ने अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उसके फायदे कम करके उसमें भी नुकसान पैदा कर दिए, क्योंकि जो मुर्गी जो वो फीट खिला रहे हैं उससे वो इस क्या होता है, उनकी मुर्गी का वजन बढ़ जाता है, गोश्त बढ़ जाता है, लेकिन उसके असर इतने अच्छे नहीं होते उसके ऊपर। फिश बेशक खुदा की नेमत है, बेहतरीन बीमारियों से बचाने का जरिया भी है और बेहतरीन ऐसे अर्जा हमारे साथ पहुंचाती है जो कि जिस्म की अफजाइश के लिए और इसकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन हमने समंदरों का हमने क्या किया, दरियाओं क्या किया, पॉल्यूट कर दिया। अब वो जो पॉल्यूटेड वाटर में बनने वाली है, ये ना सोचे कि हम सी वी पर जाएंगे तो हमें काला पानी नजर आता है, वही पॉल्यूटेड है, और हॉक्स पर जाएंगे वो पॉल्यूटेड नहीं है, हॉक्स का पानी या सेंटर का पानी बहुत साफ सुथरा आपको नजर आएगा बज़ाहिर, सीवी पे जाएंगे काला नजर आएगा, नहीं, वो जो इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट है या जो हमारे सीवरेज का पानी जा रहा है कहां जा रहा है, वहीं जा रहा है, सीवियों के साइले बहुत ज्यादा जमा हो गया, इस हद तक खराब हो चुका है पानी, लेकिन जो साफ सुथरा पानी बताई नजर आता है वो भी इतना कोई अच्छा नहीं रहा। तो हमारा ये चीजें अगर जे अपने बताते खुद फायदेमंद है, यानी मैं बात कर रहा हूं मुर्गी और चिकन या फिश वगैरह की, लेकिन अगर उसको हम, अब इस पर एक अलग टॉपिक होगा कि खुद ये जो फिश की बात हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ फिश भी इवन जो दुकानों में मिलती है वो आपको कई दिन बाद मिलती है, फ्रेश फिश भी नहीं मिलती। अब कुछ ऐसे स्टोर बन गए हैं जो आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली फिश फ्रेश देते हैं, बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जिनमें नाम आप जानते होंगे, मैक्रो मेट्रो वगैरह, इनके स्टोरेज वगैरह वो थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन हम फिर भी ये कह नहीं कह सकते कि फ्रेश फिश आपने जिस वक्त उसकी कैचिंग की वो उस वक्त आपको नहीं मिलती, उसे अगले दिन भी नहीं मिलती। यहाँ दुकानों में जो लियाकत मार्केट यहाँ करीब है, यहाँ तो जाए तो ये अगर बाकी किसी फूड साइंटिस्ट से पूछा जाए और फूड सेफ्टी ऑफिसर से पूछा जाए तो उसके लिहाज से ये फिश फेंक देने काबिल है, लेकिन बहरहाल बिक रही है और हम लोग खा रहे हैं। ओके, हम लोग तो बहुत कुछ चीजें यूज कर रहे हैं। अब एक चीज और जरा तस्करा हो जाए, क्योंकि आजकल ये भी हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारी ग़िज़ा एक तो वो चीज़ हम घर में बनाते हैं और फिर दूसरी वो ग़िज़ा हम यूज़ करने लगे, अब ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होने लगी जो प्रोसेस्ड है। अब मीट से या गोश्त से बने हुए खाने वो रेडी टू कुक के नाम पे और रेडी टू यूज़ के नाम पे वो मिल रहे हैं और वो पूरी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज मार्केट में आ चुकी हैं और वो नगेट्स और कटलेट्स और कबाब और जाने क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल है, अब सारी गोश्त से बने हुए हैं। इनको चूंकि उनको प्रिजर्व करना होता है, महफूज रखना होता है काफी लंबे अरसे के लिए, तो वो इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, कुछ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वाले कंपाउंड होते हैं ये इसमें ऐड करते हैं गोश्त को महफूज रखने के लिए, ताकि वो सिर्फ फ्रीजर में नहीं, फ्रीजर तो उसको कंट्रोल करके रख रहा है, वो दुकान में ظاہر ہے کہ فریزر تو ہر وقت کھلتا رہتا ہے, گھروں سے زیادہ کھلتا ہے فریزر, ہر وقت کھلتا رہتا ہے نا, پلس ٹیمپریچر اس کا مینٹین اتنا نہیں رہ پاتا کہ وہ میٹ کو صرف اپنی فریزنگ کی وجہ سے کنٹرول رکھے. اور پھر ان کو ظاہر ہے کہ وہ یوز کرنا ہے, وہ کبھی انڈسٹری میں بنا تھا, اس کے بعد آپ کو کبھی ملتا ہے, کافی لمبے عرصے تک اس کو محفوظ رکھنا ہے, تو اس میں ایسے کچھ پریزرویٹو ڈالتے ہیں جو کہ کہیں زیادہ نقصان دہ ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے باربیکیو اور فرائڈ میٹ کی, کہ باربیکیو اور فرائنگ سے کچھ کینسیرین انگریڈینٹس یعنی اس کے کچھ اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں, اور یہ جو ہمارا پروسیس میٹ ہے جو انڈسٹری میں اس کی فارمولیشن کی گئی ہے, اس میں جو پریزرویٹو ایڈ کیے ہیں وہ کہیں زیادہ نقصان دہ ہیں. ایک تو ہماری سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہم باہر سے لے کے آ رہے ہیں کاسٹ بھی زیادہ ہے, جو اس کی اپنی پروڈکشن کاسٹ سے کہیں زیادہ قیمت وہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. اگر آپ وہی چیز اگر آپ گھر میں بنانے میں قادر ہیں تو آپ کہیں کم پرائز پہ چیز بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ اسپیکٹ بھی ہے, دوسرے وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے, اگرچہ وہ بہت ہی فوڈ سیفٹی کے اصول اس میں ہوں گے. میں خود یعنی فوڈ سیفٹی کے معاملات کو دیکھنے والے اور ہم فوڈ سائنٹسٹ ہی ہیں, میں بیسکلی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہم یہ ضرور یہاں کہیں گے کہ یہ جتنی غذائیں ہوتی ہیں اور یہ اصول سب جانتے ہیں کہ جو قدرت نے جس طرح سے دیے ہیں اور اس کو قدرتی طریقے سے بنانے کے جو طریقے ہیں اس طرح سے یوز کریں تو سب سے بہترین طریقہ وہی ہے. جتنی چیزیں آپ پروسیسنگ کرتے ہیں اگر جو اس میں تمام فوڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈ کو آپ اپلائی کرتے ہیں وہ کسی حد تک سیو ہو جاتے ہیں, وہ فوری طور پر سے کوئی نقصان نظر نہیں آتا. لیکن اگر اس کا لمبے اثرات دیکھے جائیں, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دس دس سال کی بیس بیس سال لمبی اسٹڈیز ہوئی, تو پھر پتا چلتا ہے. لیکن یہی ایک چھوٹی سی ایک ضمنی بات ہے, سائنس نے بہت ترقی کر لی, بہت ترقی کر لی, زمین سے لے کر خلاؤں تک چلا گیا, فوڈ کے اندر بھی ہر چیز کے اندر انقلاب پیدا کر دیا اس نے, فوڈ کے اندر بھی انقلاب پیدا کر دیا اس نے. تو اب ایسے سے فوڈ بنا دی جی ایم فوڈ, یعنی اب وہ نئی نئی, اب شاید ہمارے پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے, جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ ہے, نیوٹراسیوٹیکل ہے, یعنی اس نے ایسی غذا بنا دی جو آپ کو بیمار ہی نہیں ہونے دے گی. یہ بھی انقلاب پیدا ہو گیا. جی ہاں, ابھی ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, ہمارے یہاں اب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے لیے آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بنائی ہوئی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جب بیمار آپ ہو جائیں خدا نخواستہ. لیکن اب کچھ جو ماڈرن کنٹریز ہیں ان میں یہ کانسیپٹ نہ صرف آ چکا بلکہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے, تو کہ انہوں نے فوڈ کے اندر ایسے انقلاب پیدا کر دیا اور چیزیں بنا دی کہ وہ فوڈ اگر آپ کے نارمل ڈیلی یوز کے اندر ہیں تو آپ کو بیماری ہی نہیں ہوگی, آپ کو دوا کھانے کی ساری زندگی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی ذرا زیادہ پرانا کانسیپٹ نہیں, یہ نیا کانسیپٹ ہے. آپ کیوں پریشان ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو وہ دوائیاں شروع کرے یا کارڈیوویسکولر ڈیسیز یا کینسر؟ نہیں, آپ ایسی غذا کو اپنا ایسا بنا دیجیے کہ اس میں وہ اثرات پیدا ہو جائیں کہ اگر کوئی ڈس آرڈر یعنی کوئی بیماری کا آغاز تو کسی انیشل پوائنٹ سے ہوتا ہے نا, اس کے بعد وہ بڑھتی ہے, تو وہ شروع ہی نہ ہو سکے. جیسے ہم فارسی میں کہتے ہیں غربۂ کشتن روزے اول, شروع ہی سے ختم کر دیں آپ اس کو, خاتمہ کر دیں اس کو, آگے بڑھنے ہی نہ دیں. تو یہ انقلابات ضرور پیدا ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود انسان بہرحال انسان ہے. انسان کا علم کتنا ہی بڑھ جائے, یہ ایک ضمنی بات میں کر رہا ہوں, انسان کا علم جتنا بھی بڑھ جائے بہرحال وہ تمام علوم کو احاطہ کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا. ہم سائنس کے تھرو نئی نئی ایجادات کرتے ہیں. ایک ایجاد ہم نے مثال کے طور پر مائکروویو کی صورت میں کی, بہت اس کے فائدے نظر آئے کہ جناب یہ اس کے ذریعے آپ کھانا سیکنڈز میں گرم کر لیتے ہیں, کوکنگ کر لیتے ہیں, اور جناب اسے کتنے کتنے فائدے ہیں. بعد میں جب اس کی لمبی اسٹڈی ہوئی تو معلوم چلا کہ جس ملک میں یہ انوینٹ یا ایجاد ہوا تھا اسی ملک میں بین لگا دیا گیا ہے, اور صرف اس پہ نہیں بہت سارے ممالک میں بین لگ چکا مائکروویو میں, ہمارے یہاں تو خیر بہت زیادہ چل رہا ہے, اور صرف مائکروویو کی میں صرف اگزامپل یا مثال دے رہا ہوں. بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جن کی سائنس کی تحقیق کے چونکہ تمام علوم کو احاطہ نہیں کر سکتا انسان, لہذا وہ, اور پھر چونکہ احاطہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی کوشش سے یہ علم حاصل کرتا ہے, اس کی گائیڈنس کسی کے پاس نہیں ہے. امام اپنی خدا کے نمائندے بھی ہیں اور انسان کامل بھی ہیں, علم کی وسعتوں کے بیک گراؤنڈ وارث بھی ہیں خدا کی طرف سے. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ امامت اور ان کے جو ہمیں منت استفادہ کرنا تھا معاشرے نے اور انسان نے اس طرح کیا نہیں. اب وہ ایک المیہ ہے, وہ کیا ہوا, बहरहाल, लेकिन उसका एक पहलू जहां तक मासूम का जो बुनियादी हदफ है वो मुआशरे को तकामुल पे ले जाना है, वो मानवीय तौर पे तरक्की है, लेकिन बहरहाल मादी तरक्की के भी इनकार नहीं है। इसके भी यह कहते हैं जो है इंसान को जितने भी इसके दुनिया से इस्तेफादा करने के जराए हैं उससे भरपूर इस्तेफादा करने को कहा गया, लेकिन चूंकि जब आपने एक हादी और रहबर को कट ऑफ कर दिया, यानी उनसे इस्तेफादा नहीं कर रही दुनिया, इंसानियत नहीं कर रही, हमें तो खुशकिस्मत है खुदा ने हमें इस तरह इस माशरे इस कौम में भेजा, तो फिर क्या हुआ कि फिर वो इंसान ने सिर्फ अपनी कोशिश से इल्म हासिल किया तो वो नाकिस इल्म रहा, वो कामिल नहीं रहा, और जब नाकिस इल्म रहा तो एक किसी पहलू को इंसान जब दरियाफ्त करता है तो वो उसको फायदेमंद लगता है, वो उससे नई इजाद बना लेता है या कुछ नई इन्वेंशन कर लेता है, और उस वक्त तो बड़ा फायदेमंद लगती है वो चीज, लेकिन फिर बाद में कुछ असरात सामने आते हैं कि हर चीज के कुछ ना कुछ असरात नुकसान दे रहा। आप यानी अगर मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली ना कहूं तो साइंस की अक्सरियत की इजादात कि अगर आप आजकल तो बहुत आसान है नेट के ऊपर जाके देख सकते हैं, खुद यही इंसान उसकी नुकसानात को खुद तहकीक करके साबित कर रहा है, आप तकरीबन हर चीज के नुकसानात कुछ ना कुछ होंगे। बहरहाल मैं जरा मौजे से हट गया, तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि बकरीद के मौके पे खुसूसी तौर पे जो हमें एहतियात करना है वो ये करना है कि क्योंकि गोश्त एक ऐसा सोर्स है जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है, खुसूसी तौर पे रेड मीट, तो इसको प्रॉपर वे में हम स्टोर करें, जिस तरह कहा गया है कि बार बार थॉ नहीं करें निकाल के बल्कि छोटे पैकेट्स बनाएं और उसके बाद उनको फौरी तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए। एक चीज ये भी हम बता दें अभी थॉ की जब ये बात हुई है कि अगर आपने उसको फ्रीजर से निकाला और अपने कैबिनेट पे अपने बेंच के ऊपर डाल दिया कि ठीक है ये जरा मेल्ट हो जाए फिर इसकी कुकिंग करेंगे, वो जो कई घंटे में मेल्ट होगा ये वो पीरियड है जिसमें बेशुमार जरासीम पल चुके होंगे, बेशक उसमें स्मेल ना आई, मैं मेंशन कर चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि जब वो स्मेल आएगी तो उसको हम खराब तसव्वुर करेंगे, हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें वो जरासीम पैदा हो चुके हैं जो अगर उन्होंने स्मेल तो नहीं उन्होंने प्रोड्यूस की लेकिन उनके मौलिक असर उसमें आ चुके हैं, वो जब हम खाएंगे वो कंज्यूम करेंगे वो फिर सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, इसमें यहां एक बात और भी कर रहे हैं, देखिए ये बात है कि हमारे यहां जो खाने बनाए जाते हैं वो हाई टेम्परेचर पे बनते हैं और उससे ये एक जहन में क्वेश्चन पैदा होता है कि ठीक है अगर जरासीम पैदा हो भी गए तो क्या हुआ, जब उसको कुकिंग करेंगे खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देखिए एक होते हैं जरासीम, एक होता है जरासीम से निकलने वाले कुछ ऐसे कीमियाई मुरक्कबात जो आप उसको जहर कह सकते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं वो, जब कुकिंग करते हैं तो कुछ जरासीम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उनसे रिलीज होने वाले नामियाती मुरक्कबात भी निकल जाएंगे, एंडोटॉक्सिन है वो। लेकिन कुछ ऐसे भी जरासीम होते हैं एक तो जो हीट के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं मरते, बहुत रेजिस्ट, वो उनमें मजाहमत की कुव्वत बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कहीं जाके वो मरते हैं और नॉर्मली हमारे खाने उस टेम्परेचर पे नहीं पकाए जाते, वो उसके लिए हम कहते हैं कि स्टरलाइज कर लें, वो टेम्परेचर जो है काफी हाई होता है, एक तो वो मौजूद रहेंगे, दूसरी बात यह कि उनसे जो निकलने वाले कीमियाई मुरक्कबात या टॉक्सिन्स हैं वो अपने असरात रखेंगे, खाने में आपके मौजूद रहेगा, जरासीम अगर खत्म भी हो जाए और उसके उसके जो जहर है, जहर तो नहीं बाज़ार जहर भी अपनी जो है वो चेंज कर लेता है फॉर्म, उसके मन के असरात खत्म हो जाते हैं लेकिन बासूरत में नहीं होते, लिहाजा कुकिंग के थ्रू आप जरासीम को अगर खत्म भी कर दें तो उनसे निकलने वाले जहर को या उनके टॉक्सिन को नहीं खत्म कर सकते, लिहाजा वो नुकसानदेह है। बहरहाल तो बहरहाल हम बात को समेटते हैं और यहां खत्म करते हैं कि बकरीद खुदा की तरफ से हमें एक ईद का मौका दिया गया है, एक इबादत है, वो मानवी तौर पे भी हमें सोचना है कि हम इस इबादत से किस तरह ज्यादा ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, ना सिर्फ ये कि हमें गोश्त और गोश्त से बने हुई गिजाओं के ही हम जहन अपना से उलझ के रह जाए उसमें हमारा, और बहरहाल ये नेमत है खुदा की तरफ से गोश्त भी, तो इसका सही इस्तेमाल क्या है और अपने आप पर भी कंट्रोल रखें और बहरहाल अपनी फैमिली को भी, ताकि इसके जो मनफी असरात हैं ज्यादा मकदार में यूज करना और किस तरह से बनाना है ये भी, दोनों चीजें स्टोरेज, कुकिंग मेथड और अमाउंट यानी कितनी मकदार में यूज करना, ये तीन पहलू ऐसे हैं कि जिसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है ताकि हम बेहतर तरीके से ना सिर्फ नेमतों से इस्तेफादा करें बल्कि अपनी सेहत के लिहाज से भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी सेहत को कंट्रोल रख सके। कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट कुक पे नहीं चढ़ा सकते, बिल्कुल आपकी एक वैलिड है क्वेश्चन हुआ कि अब हमने फ्रीजर से निकाला डायरेक्ट पतीली में डाल के उसको हमने कुकिंग नहीं स्टार्ट करते ना, उसका तरीका पता है क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि अब जो हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, फ्रीजर से निकाल के आप फ्रिज में रखें, फ्रिज में वो थॉ हो जाएगा, या फिर ठंडे पानी में आप इसको करें। नॉर्मली लोग जल्दी करते हैं तो क्या करते हैं, गर्म पानी में भी इसको हम करने की कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। या अगर ये भी नहीं किया ठंडे पानी में, मतलब जब डालेंगे पानी में तो वो चूंकि फ्रीजर से आया है गोश्त, पानी खुद ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तो कम टाइम लेगा थॉ होने में। बात मैंने ये कही थी कि थॉ तो करना है आपको, उसका टाइम रिड्यूस कर दें जिस तरीके से भी आप कर दें, या अगर टाइम रिड्यूस नहीं करना तो फ्रिज के अंदर रख दें, जो कि प्रैक्टिकली बहरहाल हमारी शायद मुमकिन ना होगी, हम फ्रीजर निकाल के रखें तो वो फौरन नहीं होगा, वो शायद आज रात में हम रखेंगे तो सुबह होगा कहीं जाके वो, ठीक है, जो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन उसमें क्या, ठंडे पानी में करें, डायरेक्ट कैबिनेट या शेल्फ या उसने बेंच के ऊपर नहीं रखते हैं ऐसे ही। सबसे जो खतरनाक चीज होती है वो ये कि हम मीट को ऐसे रख के कई घंटों तक भूल जाते हैं कि हम अब 4 घंटे बाद 3 घंटे पहले निकाल दिया गोश्त हमने, कि भाई ठीक है 3 घंटे के बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, ये चीज गलत है। आप उसको पानी में डाल के, ठंडे पानी में डाल के फिर आप उसको टाइम रिड्यूस कर दिया ना आपने, अब टाइम रिड्यूस करके अब आप उसको सेव काफी हद तक कर सकते हैं। माइक्रोवेव को भी यूज किया जा सकता है, डिफ्रॉस्ट, वो भी जाहिर है कि डिफ्रॉस्ट हम ऑप्शन होता है हमारे माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव जो है वो बहुत कम टाइम में आपके गोश्त को डिफ्रॉस्ट कर देगा, थॉ कर देगा और फिर उसको यूज किया जा सकता है।
अल महदी एजुकेशनल सोसाइटी पेश करता है बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प मौजूआत पर मबनी मुख्तलिफ उलमाए किराम के एक नए तरबियती अंदाज के साथ जबरदस्त डिजाइन और तफरीही मुकामात पर आउटडोर लेक्चर, जिसमें मीडिया की बढ़ती हुई खराफात और दौर हाजिर को मद्देनजर रखते हुए बच्चों की तरबियत, गुफ्तगू में इखलाकी मेयारात, घरेलू जिंदगी में पेश आने वाले मसाइल और उनका हल, मिल्लते तशई को अंदरूनी और खारजी खतरात और उनसे आगाही, और इस तरह के मुख्तलिफ मौजूआत को जदीद तर्ज और खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा हफ्ते वार तरबती व फिक्री दर्स, फौरन बाद नमाज मगरबैन क़ब्ल ज़ियारत इमामिया इमाम बारगाह जाफर तैयार में पाबंदी के साथ मुनक़िद किए जाते हैं, ताकि नई नस्ल की न सिर्फ इल्मी बल्कि फिक्री सतह को भी बुलंद किया जा सके। आज ही हमारी वेबसाइट का विजिट करें www.almehdies.com।